चलिए दूसरी तरफ, सेकंड टाइप के लोग जो पहले बताए थे, बैरून भी, ये खेल कूद, पार्टी, दावत, शादी, मंगनी, शॉपिंग, इसमें बहुत खुश होते हैं। इनका फितरी रुझान ही नहीं होता गौर फिक्र की तरफ, पढ़ना लिखना। ऐसे लोगों को जब इल्हामी दावत मिलती है ना, तो ये उसको मानने में देर कर देते हैं। जब कभी ऐसे मामले की तरफ मुतवज्जे भी होते हैं ना, तो जज्बाती अंदाज में, यानी किसी महफिल में गए, बड़ा दिल हुआ, रोए धोए, बस तौबा, बस आज के बाद मैं पक्की नमाजी या मैं कुरान पढ़ूंगी, इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन जब वो किसी नजरिए या दावत को कबूल कर लेते हैं, तो आम तौर पर फायदा किससे ज्यादा होगा आपको पता है? इनसे ज्यादा फायदा होता है। कितनों को इतनी बात से समझ आ गई है, आते देर से हैं लेकिन आने के बाद इस्लाम को वो दे जाते हैं कि इस्लाम हरकत में आ जाता है। ये हैं हजरत उमर जैसे लोग। आप हजरत उमर की जरा पर्सनैलिटी कबूले इस्लाम से पहले की देखें, आपको ये सारी बातें समझ आ जाएंगी। जब तक नहीं आए थे तो नहीं आए थे, लेकिन जब आते हैं तो ये फिर साबिकून अलवलून के दर्जे पे आते हैं। ये हैं वो लोग कि जिनके लिए फिर अल्लाह का नबी दुआ करता है कि अल्लाह या तो इस्लाम को उमर बिन खत्ताब से या उमर बिन हश्याम से तो ताकत दे दे। और ये है वो लोग जिनके लिए सहाबा कहते हैं कि इस्लाम बंद कमरों में था, यहाँ तक कि उमर मुसलमान हो गए। हजरत उमर और हजरत हमजा, ये भी इसी में आते हैं। नबी के चचा थे, घर वाले, कितना प्यार, तीन रिश्ते थे हजरत हमजा के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आपके चचा भी थे, आपके दूसरे एक भाई भी थे, दोनों ने स्वैबा का दूध पिया था, और तीसरी बात है एज फेल होने के नाते से आपके बेस्ट फ्रेंड भी थे। लेकिन 6 साल गुजारे इन्होंने इस्लाम को कबूल करने में। तो आपने सुना ही होगा ना, हजरत उमर का किस्सा तो आपने सुना ही हुआ है ना, लेकिन हजरत हमजा का भी आपने सुना है। और आप जो मैंने अभी जुमला बोला है ना, उसको गौर से समझिए, ये लोग दीन पे या आपकी दावत पे कब आएंगे? यहां से हम सबको, लोगों को दीन की दावत देने का अंदाज भी समझ आता है। लोगों का वीक पॉइंट पकड़ो। ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ इमोशंस की जुबान समझते हैं। या तो आप इनके आगे रो पड़े, या आप इनको इतना खुश कर दें कि ये खुशी में उछलते कूदते इस चीज़ पे आ जाएं, या फिर इतना बड़ा झटका दें इनको कि नहीं तो ना सही, तो फिर ये सीधे हो जाएंगे। और जब ये आते हैं ना, तो खैर बहुत है, इसलिए ये बड़ा बड़ा लिख ले, शैतान ऐसे लोगों को ही रोकता है। मेरे आप जैसे दीन पे आ जाएं या ना आ जाए को बहुत फर्क नहीं पड़ता, हमने खुद ही नमाजें रोजे पढ़ लेने हैं, कर लेने हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है, और अगर होता तो कौन होता? उमर, अबू बकर क्यों नहीं कहा? इस वजह से ये लोग इमोशनल होते हैं, ये महफिलों को गरमा सकते हैं, लोगों को उदास कर सकते हैं, लोगों को खुश कर सकते हैं, लोगों से डोनेशंस जमा करा सकते हैं, ये लोगों को इस तरह सेंटिमेंटल कर देते हैं कि लोग इनकी बात को मान जाते हैं। तो लिहाजा 6 साल के बाद ये मुसलमान होते हुए दिखते हैं अल्लाह के नबी के पास। हजरत उमर कौन थे? बनू अदी से ताल्लुक रखते थे। अल्लाह के नबी के साथ कोई खानदानी रिश्तेदारी नहीं थी, ये याद रखिए, खानदानी और था। मगर हमजा आपके सगे, दूध शरीक भाई भी और चचा भी, बचपन में साथ खेले, मोहब्बत थी, ये 6 साल क्यों लगे? इस तबीयत के मेलान की वजह से। लिहाजा आप इनका इस्लाम का कबूलियत का वाक्य सुन चुके हैं। एक दिन शिकार से वापस आए, अभी घर में दाखिल नहीं हुए कि इनकी जो लौंडी थी उसने कहा, तुम्हें पता कि आज अबू जाहल ने तुम्हारे भतीजे के साथ क्या किया? कहा क्या किया? कहा उसने तो आज उनको इतना मारा, इतना मारा। बस भतीजे की मोहब्बत में आग बगुला हुए, घर जाने की बजाय सीधे अबू जहल के पास गए और जाकर उसके सर के ऊपर कमान मारी और उसको ललकारा का, देखो तुम ये ना सोचो कि मेरे अंदर ईमान है कि नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें कह दूं कि आज से मैं भी ईमान लाया हूं, मेरा मुकाबला करना है तो मैदान में आके कर लो। खैर जो अबू जहल था वो डर गया, माफी मुफी मांगी, छोड़ दिया। वापस आए ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कहा भतीजे तुम्हें पता है आज मैं क्या करके आया हूँ? ये सारा वाक्य सुना दिया। उस वक्त फिर अल्लाह के नबी आजुर्दा थे, कहा कि आप खुश नहीं हुए मेरी बात पे? कहा चचा आज तो आपने भतीजे की मोहब्बत में अबू जहल से लड़ाई की है, मैं उस दिन खुश होऊंगा जिस दिन आप इस्लाम की मोहब्बत में उससे लड़ेंगे। कहा अच्छा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला, जज्बाती टॉर्चर दे। यकीन करें हमें ना अपने शौहरों को सिखाना आता है ना अपने बच्चों को आता है, मैं तो यही कहूंगी। यही दो करीब के रोग है ना हमारे, भाई बहन भी पहचाने मेरा कौन सा भाई क्या है, मेरी बहन कौन सी है, वो पीपल पर्सन है कि वो ह्यूमन है फलां फलां। और ऐसे लोग हमेशा जज्बाती झटकों पर दीन पे आते हैं। हजरत उमर देखे बहन का खून नहीं देख सके, जज्बाती होके गए थे घर से मारने के लिए, पता चला कि बहन तो खुद मुसलमान हो गई है तो उधर चले गए। बहन ने जरा सी आगे से चूचा की, इन्होंने उसको थप्पड़ लगा दिया या कुछ मारा, खून निकल आया। बस वो खून निकलना देखा तो उमर के दिल की दुनिया बदल गई, और वहीं से नंगी तलवार लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में गए। तो जब गए तो मुश्किल से गए, रुकावटें बहुत थीं, लेकिन जब गए तो क्या कुछ मिला। इतनी बात क्लियर है? अब यहां आप समझिए, इंसानी मिजाज का ये फर्क नबियों के अंदर भी होता है। ठीक है, नबी तो नबुवत के मुकाम पे, लेकिन कुछ अंबिया का मिजाज सिद्दीकीन से ताल्लुक रखता है और कुछ का शुहदा से। आप कह सकते हैं कि सिद्दीकीन कौन है? तन्हाई पसंद लोग। और शुहदा कौन है? जो लोगों में हाजिर रहने वाले। फर्क समझ आ गया दोनों का? कुछ नबियों का मिजाज जो है वो सिद्दीकियत का होता है। यहां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और दूसरे हजरत इदरीस के साथ लफ्ज़ सिद्दीक क्यों आया? अब फर्क समझ आइए कि बचपन से ही हजरत इब्राहिम को गौर और फिक्र की आदत थी। याद है सूरत अल अनाम, हाजर रब्बी हाजर रब्बी। मुशाहिदा हक का जो सफर था, या इब्राहिम जैसा बच्चा जो इतने ऑपोजिट माहौल में पैदा हुआ, वो कैसा था? वो बहुत ज्यादा तन्हाई पसंद था। ऐसे लोगों के पास कोई उस्ताद ना भी पहुंचे ना, तो ये फितरत के इशारों को समझते हुए इस्लाम कबूल कर लेते हैं। इसके बरक्स हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा का जिक्र आगे आएगा। हजरत इस्माइल के बारे में रिवायत में आता है कि आप शिकार के बहुत शौकीन थे, इस शौक में कई कई दिन घर से बाहर रहते। दो मरतबा हजरत इब्राहिम उनसे मिलने गए, लेकिन मिल ना पाए। पता चला किधर है, कहा कि वो तो घूमने गए। इसी तरह हजरत मूसा का मिजाज जलाली था। आपने पीछे पढ़ा कि एक शख्स को मुक्का मारा तो उसकी जान ही चली गई। तो इंसानी मिजाज का ये फर्क कुछ नबियों को सिद्दीकन रसूला बना देता है, कुछ को नबीयन, किसी को शहीद, कुछ को करता है। तो इस तरह से अल्लाह ताला नबियों से मुख्तलिफ काम लेते हैं, मिजाज फर्क है। देखिए जिसने ह्यूमन नेचर समझ ली ना दूसरों की, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह उनके नसीब में कर दे, लेकिन जिनसे वो बात करेगा वो बात जरूर समझेंगे। एक ही बंदे के साथ आप चार लोग मुख्तलिफ बात करके देख लें और सब बातों का लुब्बे लुबाब एक ही है। मिसाल है नमाज, आगे आएगी बात तो यहाँ थोड़ी समझ लें। आप चाहते हैं आपके बच्चे नमाजी हों, या आप चाहते हैं कि आपके शौहर नमाज पढ़े या कुछ और, एक बंदे को एक ही मैसेज चार मुख्तलिफ लोग देने जाए, आप देखेंगे चारों के पैगाम देने का तरीका, बात करना और उसका रिजल्ट बिल्कुल फर्क होगा। सच है कि नहीं है? हमेशा वो बात करें जो अगले के दिल लगती बात हो। मुझे बहुत ही बुरा लगता है वैसे, सच्ची जो बात है, कभी कभी कुछ साथी ऐसे होते हैं ना, कहीं किसी से कोई भी मामला हो, कहते हैं हम बात कर चुके हैं, वो कुछ नहीं होगा, ये नहीं वो, अब आप बात कर लें। और कभी अगर मैं किसी से कोई बात करूं और वो बात मान जाए ना, तो लोग क्या कहते हैं, देखा आपकी बात को कोई रद्द नहीं करता। तो मैं कहती हूँ अस्तग़फ़ार करें, अगर मेरे हाथ में इख्तियार होता तो दुनिया में इस वक्त एक भी काफिर और एक भी बेनमाज़ी ना होता। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह किसी के दिल में आपकी बात डाल देता है। लेकिन बात को मौका महल देखें, बात करें। अल्लाह सुब्हान तआला ने हज़रत इस्माइल और मूसा की शख्सियात को यहाँ शुहदा के रंग में पेश किया और बाकी दो को किया। बाकी सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ वापस आ जाए 42 पे। आपने इस सारी बांट को इंजॉय किया? लोगों को समझना आता है? आज जाके आपको एक होमवर्क दूँ, करना है तो कर ले, नहीं करते तो ना करें। कोई ये कह दे कहा था नहीं, काम समझे नहीं, जो मर्जी करें, आप सब वही समझते हैं जो आप समझना चाहते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। लेकिन आज आप सिर्फ अपने फैमिली मेंबर्स, माँ बाप है, भाई बहन है, जो भी आपके साथ रहते हैं स्पेशली, उनके बारे में ये नोट करके लाएं, कौन पहली शख्सियत है कौन दूसरी है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो जब मिजाज की तशखीस हो जाती है तो दवा देना बहुत आसान है। आज के दौर में डॉक्टर्स टेस्टों पे जोर देते हैं ना, और बीमार कर देते हैं, और अंदर मशीनें रेजें डाल डूल के अच्छी खासी सेहत खराब करते हैं। पहले दौर में हकीम जो थे वो मिजाज पहचानते थे। आपको तो ये नब्स, मैंने ये भी एक दफ़ा सीखी थी, और जब सीखी तो हर वक्त अपनी ही नब्स पे हाथ होता था। यकीन करें बहुत अच्छी एक हमारी साथी थी कराची की, ये बात है, तो वो नब्स देख के बताती थी कि क्या आप सोचते हैं क्या करते हैं। ये भी एक पूरा इल्म है, कभी सोचा भी नहीं था इस तरह। तो नब्ज से पता चल जाता है कि इस बंदे का मिजाज गर्म है, ठंडा है, मुतहरिक है। तो वो नब्ज देख के बताते थे कि ये बंदा कैसा है, इसको गर्म चीज दें या इसको ठंडी चीज दें, राइट? तो लोग ठीक हो जाते थे। आज ना वो हकीम रहे ना वो बीमार रहे, तो नुकसान जो होता है वो हमारा जिस्म भुगतता है। एक चीज की दवा खाते हैं तो दूसरी तरफ से बीमार हो जाते हैं। तो लिहाजा हम सब इस चीज को समझें, और इसी का नाम हिकमत है। और याद रखिए, ये अल्लाह ताला तड़प तड़प के मांगे तो देगा आपको। इल्म तो आपको थोड़ी सी कोशिश से मिल जाएगा इंशाअल्लाह ताला, लेकिन हिकमत आपको मिलेगी जब आप मिजाज शनास होंगे और इन सारी बातों को देखें। आखिरी बात करके चलती हूँ कि हमारे नबी क्या थे, क्योंकि अभी हमने बात कर ली कि इब्राहिम जो थे वो सिद्दीक नबीयन थे, हज़रत इदरीस सिद्दीक नबीयन थे, और हज़रत मूसा और हज़रत जो इस्माइल थे वो शहीद थे कह लीजिए, या नबुवती नबी क्या थे। मुझे बड़ी खुशी होगी, बल्कि प्राइज है, अगर आप इसका जवाब कुरान की आयत से दें। 3 सेकेंड और है। सूरत अल-अहज़ाब आयत 45। या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा। ए नबी, हमने बेशक आपको भेजा गवाही देने वाला, खुशखबरी सुनाने वाला और खबरदार करने वाला। और सूरत निसा की आयत 41 में हम पढ़ चुके, फकैफ इज़ा जीना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन। फिर क्या हाल होगा जब हम लाएंगे हर उम्मत में से एक गवाह, व जीना बिका अला हाउलाई शहीदा, और हम लाएंगे आपको इन पर गवाह। तो अल्लाह के नबी के मिजाज में शहादत का मिजाज भी था, सिद्दीकियत का मिजाज भी था, क्योंकि मुबशिर और नज़ीर बंदा बन ही नहीं सकता जब तक वो सिद्दीक ना हो। तो सारी बातों का खुलासा क्या है कि अल्लाह ने लोगों को मुख्तलिफ मुकामात देकर उनके जो लोग थे उनके लिए तैयार किया। सूरह हदीद में आयत 19 में आता है, उलाइक हुमुस सिद्दीकून व शुहदा इंद रब्बिहिम। सिद्दीक और शुहदा जो हैं ये अपने रब के करीब होंगे। तो जो बात मुझे हल्की सी समझ आई है कि अल्लाह के पास कुर्ब के दर्जे हैं, जो लोग बिल्कुल अल्लाह के करीब रहेंगे ना वो सिद्दीक होंगे। हदीस में आता है जब अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो, क्योंकि इसकी छत रहमान का अर्श है। तो क्या आपका ख्याल है सिर्फ नबी लोग ही जाएंगे अल्लाह के करीब? कहा क्यामत के दिन तुम कई ऐसे लोगों को देखोगे कि जिन पर लोग रश कर रहे होंगे। तो लोगों ने कहा अल्लाह के नबी वो अंबिया कराम होंगे। कहा वो नबी नहीं होंगे। तो अल्लाह ने इंसानियत के लिए कितने मुकाम रखे हुए हैं। कितने दिन रह गए मेरे और आपके पास जिंदगी के को पता है? तो चलिए, बड़ी बात नहीं है, सालेहीन तो बन ही रहे थे थोड़ी देर, काफी सालों से थोड़ी थोड़ी कोशिश शहादत की भी थी। अब जिसको मुकाम बनाना है ना, वो सिद्दीकियत का मुकाम है। फिर जुबान झूठ नहीं बोलेगी, नेवर नेवर एंड नेवर। जुबान इतनी सच्ची होती है कि जमीन पे कुछ बोलो तो आसमान से अल्लाह फिर उसकी बात को निभाने के लिए वो काम कर देता है। हदीस में आता है लोगों में कुछ लोग ऐसे हैं, किसी की दावत करें लोग कबूल ही नहीं करते, कहते छोड़ो इनके घर क्या जाना है, ये क्या पकाएगा, ये किधर बिठाएगा, ये क्या खिलाएगा। कोई खुद दावत करे तो उनको नहीं बुलाते कि ये फटे पुराने कपड़ों में आ जाएगा, हमारी महफिल का हुसन खत्म होगा। रिश्ता मांगे लोग रिश्ता ही नहीं देंगे, इसका ऑपोजिट लगा लें, ना देंगे ना लेंगे। लेकिन अल्लाह के यहाँ उनका ये मुकाम है कि अगर वो अल्लाह के नाम पर कसम भी खा दे तो अल्लाह इनकी बात निभाने के लिए वो काम कर देता है जी। और ऐसे लोग मौजूद हैं हमारी मुस्लिम हिस्ट्री में। फिर अल्लाह कहता है अब करो, जैसे यूनुस की कहानी आप सुन चुके हैं ना, इसी तरह एक औरत थी अल्लाह के नबी सल्लम के दौर में, तो किसी की बहन का दांत टूट गया या कुछ इस तरह से हालात हो गए थे कि दांत तोड़ा, तो कसास में दूसरी तरफ ये हक था उनके पास कि वो इसका दांत तोड़ दें। वाकया लंबा लेकिन उसका लुबे लबाब यह है, इतने यकीन से उस शख्स ने कहा मैं यकीन से कहता हूँ कि वो मेरी बहन का दांत नहीं तोड़ेंगे। एन वक्त पे जबकि वो करीब था वक्त के वो अपना बदला ले ले, उन्होंने कहा जो हम माफ करते हैं। उस पे भी अल्लाह के नबी ने कहा था कि इस शख्स की बात पे फैसला बदल लिया। तो ये है ना असल इज्जत, हमारी क्या इज्जतें बनी हुई हैं, गली गली घर घर हम बातें सुनते हैं और करते हैं। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला की जात के साथ इखलास आ जाए। और आप देख रहे हैं आयत 42 में जो पहली बात उन्होंने बाप को कही थी, लिमत आबुदू, इस पे सारी कहानी शुरू हुई हमारी बात की, क्यों तुम इबादत करते हो। यानी सिद्दीक कभी शिर्क बर्दाश्त कर ही नहीं सकता, चाहे वो फिल्मों में शिर्क हो चाहे दुकानों पर शिर्क हो। एक दिन तस्वीर बनानी थी मेरे हस्बैंड के पासपोर्ट के लिए, इनका रिन्यू होना था, कुछ ऐसी चीज़ थी। किसी ने इनको कहा कि वहाँ दुकान है तो वहाँ से आप बनवा लें। हम इनको उतार के चले गए घर कि ठीक है जी, बनवा के ले आते हैं यहूदी। थोड़ी देर बाद वापस आ गए, ना तस्वीर ना कुछ। मैंने कहा क्या हुआ? कहते उसकी दुकान के बाहर बुत पड़ा हुआ था, मैं अंदर ही नहीं गया। देखिए फर्क होता है। बाद लोग कहते अच्छा यहाँ जॉब कर लें, अच्छा ये हलाल है, मजबूरी है, हमारे कारोबार में ये मजबूरी है। सिद्दीक होंगे तो आप तो बाल भी नहीं बर्दाश्त करेंगे। क्या कोई आप मेरे सामने खाने में बाल हो तो खा सकता? हाँ नहीं खा सकता ना। तो जब सिद्दीकियत होती है, सवाल शराब तो बहुत बड़ी चीज है, वो तो सिगरेट नहीं अपने कारोबार में बर्दाश्त कर सकता। ये मांगने की चीज है, और ये फर्क समझ आ गया ना तो मेरा हाल काम सारा हो गया। ये जो फर्क है, तो वो ये कहता है, ये वो कहता है, उसका ये हर दीन वाले का भी मिजाज फर्क होता है। कोई नरम मिजाज के मसले दे देता है, कोई खुद ही मजबूर है तो वो दूसरों को कैसे मजबूर ना समझे। कोई खुद कहता है हाँ एक घर सूद पे ले लो, तो वो दूसरों को भी कहेगा हाँ एक तुम भी ले लो। वो तो बेचारा सही कह रहा है, जो अपने लिए पसंद करता है वो दूसरे के लिए, और दूसरा कहता है कोई मुझे जरूरत नहीं है इस काम पे अपनी आपको आखिरत में मुश्किल में डालने की। तो ये लेवल है, अपने लिए दी बेस्ट को चूज करें, फिर दूसरों के लिए तो उम्मीद रखें कि अल्लाह उनको कहीं ना कहीं जन्नत में देगा। और ये जो जन्नत के 100 दर्जे अल्लाह ने रखे हैं ना, उसका फर्क भी ये समझ लें। हर बंदा ना तो फिरदौस में पहुंचेगा, लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा फिर भी हाई एम्स रखो। तो लिहाजा लिमा ताबुदु मा ला यस्मा वला युबसिर, क्यों उनके आगे जाते हो, माथे टेकते हो, ना सुनते हैं ना देखते हैं। वला युगनी अनका शैया, और वो तो आपके कुछ काम भी नहीं आते हैं। या बती, अब अगली आयत में देखिए, या बती इन्नी कद जानी मिनल इल्मी, अब्बा जान यकीनन मेरे पास वो इल्म आया है जो भी आपके पास नहीं आया। देखिए बाप को खुद ही कॉर्नर दे रहे हैं, बाप पे तनकीद कर रहे हैं। अब आप यहां से क्वेश्चन ले लें कि क्या बड़ों को मना करना चाहिए उनमें कोई बुरी बात हो तो? कई लोग सवाल नहीं रखते कि जी हमारे बड़े चुगली कर रहे होते हैं, क्या फिर हम उनको रोके ना, हमारे बड़े को जुल्म कर देते हैं तो? नहीं, देखिए अंदाज देखिए, यस बात अच्छी है, तरीके से करें, और साथ ही बाप को शर्मिंदगी से बचाने के लिए कह रहे हैं नहीं अब्बा जी आपका कसूर नहीं है, असल में मैं कोई छोटा बन के बहुत अक्लमंद नहीं हो गया। फर्क कितना है कि कद जानी मिनल इल्मी, बस मैंने आपसे पहले कुरान पढ़ लिया, मेरे पास इल्म आ गया। और आप अगर यहां अरबी की खूबसूरतियां देखें, ये नहीं कहा इन्नी कद जानी इल्मो, क्या कह रहे हैं मिन इल्मिन, थोड़ा सा इल्म आया बस। मिन तबईज के लिए होता है, सम ऑफ पार्ट ऑफ, यानी ये उनकी कसरे नफसी है कि मेरे पास इल्म आ गया, मालूम याती का जो आपके पास नहीं आया। तो क्या दलील मिली कि जब हम कुरान पढ़ने के बाद किसी ऐसे रिश्तेदार पे तनकीद करें या उसकी इसलाह करें, तो ये उसको जरूर एहसास दिलाए कि देखो भाई मैं भी ऐसी थी, देखो मेरी बहन मैं ऐसी हूं, बस फर्क इतना है कि अब कुरान पढ़ लिया, अब मुझे तुमसे ज्यादा पता चल गया, तो तुम मेरी इस बात को मान लो, गोया कि मैं तुम्हें जो मना करती हूँ वो कुरान की रोशनी में कर रही हूँ। तो फिर आपके अंदर वो हवा नहीं भरेगी बहुत कि मैं आलिमा बन गई हूँ और मैं बहुत नेक हूँ, अल्लाह ने मुझे सिखा दिया, वो हिदायत आई। जैसे सूरत बकरा में हम आयत 38 में पढ़ चुके, फ़ैम मयातियन्नकु मिन्नी हुदन, बस जब आ जाए तुम में से हिदायत उसके पास, फिर वो हिदायत को मान ले तो फला खौफुन अलैहिम। तो लिहाजा बड़े प्यार से कहते हैं फत्तबिनी, बस आप मेरी पैरवी कीजिए, अहदिका सिरातन सदिया, मैं आपको सीधी राह दिखाऊंगा। देखिए कितना खूबसूरत तरीका है, इसमें भी तबलीग का एक और अंदाज के एक तरफ दलाइल के साथ समझाया, मोहब्बत और एहतराम के साथ समझा दिया। सूरत अलंबिया में भी हम इनके बहुत खूबसूरत जुमले सुनेंगे इसी बारे में। अब यहां क्या कहते हैं अहदिका सिरातन सदिया, अहदी का लफ्ज क्या है हदिया, तोहफा, फॉलो करना, राह दिखाना। सिरात के लफ्ज को समझ लीजिए, देखिए एक लफ्ज अरबी में आता है सबील और एक है सिरात। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सबील और मुस्तकीम नहीं का, या सिरात तक का सवीयन का है, सबीलन सवीया नहीं का। फर्क क्या है, लफ्ज सिरात जो है ना इसकी जमा नहीं होती, ओनली वन वे, ओनली वन पाथ, जबकि सबील और सुबुल वाहिद और जमा, यानी ये इतना गहरा नुक्ता है सूरह फातिहा को अगर नजर में रखें, ओनली वन वे टू गो टू जन्ना। आपने कभी कोई ऐसी बिल्डिंग देखी हो कि जिधर पहुंचने का बस एक ही रास्ता हो? देखी होगी कोई, यह सोचे जहन में, कोई यू टर्न नहीं, कोई कहीं मुड़ना नहीं, ये नहीं कि साइड रोड, बैक रोड, फलार रोड, कोई शॉर्टकट, नथिंग। तो जन्नत में जाने का ओनली वन रास्ता क्या, اشہد اللہ الہ الا اللہ، اللہ کو ایک ماننا اور اس کی بات ماننا. تو کہا کہ میں تجھے سیدھا راستہ دکھاتا ہوں. لفظ سوی یا ذرا ہمارے لیے نیا ہے، سین واو یا سے سوی، ہموار، بے نقص، بے عیب اور درست راستے کو کہتے ہیں. یعنی میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا. اب یہاں ایک بڑا خوبصورت سا نقطہ دکھ رہا ہے کہ باپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں میں نہیں ٹوکا. اچھا آئے میں آپ کو نماز سکھاتا ہوں، آئے میں آپ کو ذرا روزہ رکھنا سکھاؤں، نہیں کہا. آپ آدھے میں جنرلی آپ کو گائیڈ کر دیتا ہوں. خیر باپ کو ابھی بھی کہتے ہیں کچھ اور. کیا آیت 44، یا بتلا تعبد الشیطان. یہاں پھر ایک عمل کا نقطہ نوٹ کیجئے گا. پہلے سیدھا راستہ دکھانے کی بات کر لی، پہلے توحید کی بات کر لی، اب شیطان کی بات کی ہے. پہلے کیا ہے؟ ڈوز، پھر ڈونٹس. اے ابا جان، شیطان کی عبادت نہ کیجئے گا، اس کی بندگی نہ کیجئے گا. ان شیطان کان للرحمن عصیا، کیونکہ شیطان تو یقیناً رحمان کا نافرمان ہے. چلیے یہاں دیکھے گا، تبلیغ کے تین نقطے آپ کو ان تین آیتوں میں دیکھیں گے. پہلے کیا کیا؟ ڈوز بتا دیے. ابو ڈو دس، یہ کیجئے یہ کیجئے. اب آیت 44 میں کیا بتا رہے ہیں؟ ڈونٹس، یہ نہ کیجئے وہ نہ کیجئے. یہ ترتیب بڑی اہم ہوتی ہے. جب بھی کسی کو دین کی بات کریں تو یاد رکھیے گا، لوگ ڈوز پہ اتنا مائنڈ نہیں کرتے، ڈونٹس پہ بہت اوفینڈ ہوتے ہیں. کلیئر ہے بات؟ آپ لوگوں سے کہ نماز پڑھے، وہ کہتے ہیں ہاں بہت اچھی بات ہے، پڑھنی چاہیے. ہاں واقعی میں نہیں پڑھتی، سستی کرتی ہوں. آپ انہیں کہتے ہیں روزہ رکھے، وہ کہتے ہیں یس وی ہیو ٹو ڈو. ڈوز 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 ڈوز، ذکر کرے، اذکار کرے، کب بھی کوئی مائنڈ نہیں کرے گا. آپ ایک دفعہ ان سے بات تو کریں کسی ڈونٹ کی، کہ آپ یہ نہ کریں، وہ نہ کریں، آپ پردہ کر لیں، یا آپ خاشی نہ کریں، اسراف نہ کریں، تو کٹ 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 آگے سے جواب ہوں گے کہ نہیں جی یہ کیسے. جب لوگوں کی ناپسندیدہ چیزوں پہ تنقید کرتے ہیں نا، تو وہ الجھتے ہیں. تو پہلا راستہ کہ پہلے لوگوں کو اچھی اچھی باتوں کا حکم دیں، پھر اس کے بعد ڈونٹس کی بات لیں. اب تیسرے سٹیپ پہ پھر کیا کہنا ہے؟ آیت 45، یا بتینی خوف یمسک عذاب من الرحمن. ابا جان مجھے اندیشہ ہے کہ رحمان کی طرف سے کوئی عذاب آپ کو نہ پکڑے. ترتیب یاد ہے؟ پہلے ڈوز، پھر ڈونٹس، اور اب تنبیہ، وارننگ. ابا جی مجھے ڈر لگ رہا ہے میرے ابو جہنم میں نہ چلے جائیں. فتکون علی شیطانی ولی، یا پھر ساتھ ہی ان کو گلٹ سے اور سٹریس سے نکالنے کے لیے کہتے ہیں ہاں ہاں شیطان کے پھر آپ دوست نہ بن جائیں. یعنی آپ تو برے نہیں ہیں لیکن شیطان بہت برا ہے. ترتیب سمجھ آئیے؟ انبیاء کرام کی باتوں میں کتنی حکمت ہوتی ہے. یہاں پتہ کیا چلا کہ اگر اولاد کو اللہ ہدایت دے دے تو ماں باپ کو بھی اس راستے پہ بلانا چاہیے. دوسری بات ہے، کیا باپ شیطان کا پجاری تھا؟ کیا وہ ورشپ کرتا تھا شیطان کو؟ نہیں. معروف معنوں میں باپ شیطان کا پجاری نہیں تھا، لیکن بتوں کی پوجا اصل میں شیطان کی پوجا ہے. روایت ملتی ہیں کہ ہر بت کے پیچھے ایک شیطان کھڑا ہوتا ہے. تو جب کوئی بت کو سجدہ کرتا ہے تو وہ اصل میں شیطان کو سجدہ ہو جاتا ہے. عصیہ کا لفظ یہاں آیا ہے، عربی زبان میں ایک لفظ ہے آسی، فائل کے ساتھ سمجھے، فائل کا وزن ہوتا ہے، نافرمانی کرنا. اب اس سے عصیت بہت نافرمانی کرنے والا، یہ صرف مشبہ ہے اور اس صورت میں اس کی بہت مثالیں ہیں، یعنی ایگزیجریشن ہے ہر چیز میں. پتہ کیا چلا کہ اطاعت اس کی جائے گی جو خود اللہ کا فرما بردار ہو. نافرمان کی بات ماننے والا خود بھی نافرمان ہے. کسی کے پیچھے چلنے سے پہلے یہ دیکھے کہ وہ خود کہاں چل رہا ہے. یا باتی، بار بار محبت کی باتیں. یمسہ کا میم سین سین سے، چھو جائے گا آپ کو عذاب رحمان کا. ہائی لائٹ کریں لفظ عذاب من الرحمن کو. کبھی ذہن میں آ سکتا ہے کہ رحمان بھی عذاب دے؟ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے عذاب جو دنیا میں آتے ہیں نا ہم پہ، یہ رحمان کا رحم ہوتا ہے. کیوں؟ کہ اس کے بعد آنکھیں کھل جاتی ہیں. سیلاب آیا، گھر ڈوب گیا، پھر زندہ بچ گئے، تو ساری زندگی کے لیے ایک نصیحت ہو گئی کہ بہت سارے سامان کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس کے بغیر بھی ہم جی سکتے ہیں. جس عذاب سے بندہ نصیحت لے لے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتا ہے. اور شیطان کو دوست بنانا کیا؟ اس کی باتیں ماننا. اب یہاں تک تو ہے ایک محبت والے بیٹے کی بات. اب باپ کا جواب سنیے. آیت 46، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم. اس نے کہا اے ابراہیم، کیا تم کنارہ کشی کر رہے ہو میرے معبودوں سے؟ چوٹ پڑ گئی نا. راغبہ کا لفظ پیچھے پڑا آپ نے, اور ابراہیم ہی کے تصور میں آیا تھا. چلیے پہلا سپارہ یاد ہے کچھ؟ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِحَ نَفْسَهُ, یاد آئی آیت؟ کون ہے جو بے رغبتی کرے ابراہیم کے طریقے سے سوائے اس کے جو بے وقوف کر لے اپنے نفس کو. وہی لفظ ہے ادھر. رغیبہ سے لفظ راغبن کیا ہوتا ہے؟ پھیرنے والا. حمزہ جو ہے نا ادھر آ, یہ سوال کیے کیا تم پھیرنے والے ہو؟ رغبت کرنا, بے رغبتی کرنا, آگے چونکہ ان آ رہا ہے تو اپوزٹ معنی میں, یعنی بے رغبتی. کیا ہو گیا تجھے, میرے بتوں سے کوئی بے رغبتی نہیں رہی؟ اچھا جی, یہاں کیا باپ کہہ رہے ہیں؟ یا ابراہیم. یہ ہے وہ نقطہ جس کا خلاصے میں ذکر کیا تھا. بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ یا بتی یا بتی یا بتی. اور باپ کیا کہتا ہے؟ یا ابراہیم, غصے میں. بیٹا کر رہا ہے لجاجت سے, پیار سے بات, اور باپ کر رہا ہے غصے سے بات. لئن لم تنتہی لارجمنک, اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا. لا ارجمنک, بہت شدت ہے اس میں, لام بھی شدت کی ہے اور جمنک میں نون پہ جو شد ہے نا, یہ بھی شدت کی ہے. شیورلی آئی ول رجم یو, یہ مطلب ہے سنسار کر دوں گا, پتھر مرواؤں گا کہ اس کے ساتھ ہی مر جاؤ گے. واہ جرنی ملیا, اور اگر بچنا چاہتے ہو تو گیٹ آؤٹ. یہ واہ جرنی ملیا کا ترجمہ انگلش میں یہی لکھ لیں, گیٹ آؤٹ فرام مائی ہوم. حجر یحجر سے ملیا, مدت سے دور چلے جاؤ. میم لام وا روٹ ہے, پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں. املی لہم, املا زمانے دراز. مہلت کا لفظ بھی اسی سے ہے. واملی لہم یعنی چلے جاؤ, میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا, تمہاری یہ باتیں مجھے برداشت نہیں ہو رہی, میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ. یہ باپ کا کٹھور لہجے کا جواب تھا. پھر ذرا بیٹے کا محبت بھرا جواب دیکھیے, آیت 47. قال السلام علیک, اچھا میں جا رہا ہوں تو پھر آپ پہ سلامتی ہوں. یہ ہے سلام متارکہ, جب بات نہیں بن رہی, آپ دھمکیاں دے رہے ہیں, نہیں مانتے تو آئی ایم گوئنگ, لیکن آپ کو پھر بھی سلامتی کی دعائیں ہی دے کر جاؤں گا. سأستغفر لك ربی, ہاں میں آپ کے لیے اپنے رب سے استغفار کرتا رہوں گا. کس بات پہ؟ ایک تو جو آپ شرک کر رہے ہیں اور دوسرا جو آپ نے مجھے نکال دیا. ہاں مجھے امید ہے کہ وہ آپ کو معاف کرے گا, کیونکہ انہو کا نبی حفیہ, وہ مجھ پر بہت ہی زیادہ مہربان ہے. اتنا خوبصورت یہ نقطہ ہے اسلام کا کہ آپ دیکھیں گے ابراہیم کو اپنے رب پر بڑا مان تھا. اور یہ مان کب آتا ہے؟ جب آپ رب کے لیے کچھ کر چکے ہو. کہا کہ میں اپنے خصوصی تعلق کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے بخشش مانگوں گا. اتنے سخت جواب کے بعد بھی بیٹے کا انداز اتنا ادب والا, بلکہ اپنے مہربان رب سے دعا کرنے کا ارادہ, اور ساتھ ہی ساتھ اپنے تعلق کی بنیاد پر اللہ سے دعا کرنا. کیا مجھے بھی رب پر اتنا مان ہے؟ خود سے پوچھیے, کیا میں کہتی ہوں میرے رب مجھ سے بہت مہربان ہے؟ جو حفیع ہے نا, حفیون, پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں یا شاید آگے بھی آئے گا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے, کان کا حفیون, انتہائی مہربان ہونا, ہمدردی, درد مندی, نرمی, اس طرح سے کہ میرے رب کے ساتھ بڑے خفیہ تعلقات ہیں, یہ سمجھ لیں آپ اپنے لیے. یہاں سے آپ دیکھیے, دشمنوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا, ہم تو اپنوں کے ساتھ بھی اچھا نہیں کر پاتے. یاد رکھیے, ہر مبلغ کے لیے لازم ہے کہ وہ ہمدرد ہو, درد مند ہو, نرمی ہو. کیوں؟ نفرتیں نفرت کو جنم دیتی ہیں, ہمیشہ محبتوں سے دل جیتے جاتے ہیں. کسی کی بات بڑی اچھی تھی کہ خون کا داغ پانی سے دور ہو جاتا ہے, خون کا داغ خون سے دور نہیں ہوتا. صاف ٹیبل کو گندے کپڑے سے صاف کریں گے نا تو وہ ٹیبل اور گندا ہو جائے گا. اسی طرح سافٹ ورڈز, لین, نرمی لوگوں کے اندر سے نفرتوں کو ختم کرتی ہے, اور طائف والوں کے ساتھ اللہ کے نبی نے جو کیا وہ اسی کی دلیل ہے. اچھا آپ سوچیں گے اتنا حوصلہ کیسے آتا ہے, ہم تو پہلی بات سن کے پٹاخ سے بولے تھے, پھر تو میرے تن بدن میں آگ لگ گئی, پھر میں نے کہا جاؤ بھاڑ میں, جاؤ آگ میں. تو یاد رکھیے, با مقصد انسان اللہ کی خاطر پتھروں جیسی باتیں سن کر بھی सह जाते हैं। आप देखिए भिखारी होते हैं ना, उनका एक मकसद है कि मैंने भीख मांगनी है। शायद 80% जगहों से उनको डांटी पड़ती है, चलो भाग जाओ, लेकिन चूंकि मकसद है, आप डांटें, आप गुस्सा करें, आप जितना डांटेंगे ना वो उतना आप बाजी दे देना, बाजी दे देना। क्यों? क्योंकि उनको पैसे चाहिए। चंद सिक्कों के लिए कोई डांट सुनकर भी बर्दाश्त करे तो आपको मुझे जन्नत लेने के लिए क्या लोगों की बात नहीं सुननी। आज भी आप देखिए जब लोग जॉब पे होते हैं ना, तो अपने बॉस की बातें सुनकर आगे से नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? जॉब चली जाएगी, मालिक नाराज होकर निकाल देगा। तो जिसने अल्लाह को अकबर समझा, क्या वो फिर अल्लाह की लिए बातें सुनकर नाराज होगा? नहीं। हमारा हाल क्या है कि मोमन बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन अमल के वक्त में डांट ढूंढ के आ जाते हैं। अल्लाह के नबी का यही मिजाज था। और दीन की दावत देने वाला गालियां खाकर भी बदमजा नहीं होता, हिम्मत नहीं हारता, बड़ा सख्त होता है, स्टबन। ढीठ नहीं मैं कहूंगी, बुरा लफ्ज लगता है। दीन के लिए आपको स्टबन होना पड़ेगा। लव एट वन साइड, कोई जवाब दे ना दे, कोई केयर करे ना करे, बस वो लोगों के लिए मोहब्बत से तड़पता ही रहेगा, क्योंकि सामने एक बहुत बड़ा मकसद है कि इसको पता नहीं है कि इसके लिए किस चीज की मुझे तलब है। ग्राहक बहुत सारी चीजें खुलवाते हैं, ये खोलो कपड़ा, और खासतौर पर पाकिस्तानी औरतें सारे खुलवा के बाद में कहती हैं नहीं अच्छा फिर आऊंगी सोच के। क्या करते हैं, कुछ तो बुड़बुड़ाने लग जाते हैं ना, तुमने लेना ही नहीं था पहले। लेकिन अमूमन क्या होते हैं, सब्र करते हैं और सारा कुछ करके नक्स निकालते हैं, नहीं ये सब ठीक है लेकिन ये मुझे सूट नहीं करता, खुदा हाफिज़, अभी तो लेने नहीं आई थी, आज तो देखने आई थी। करती हैं ना औरतें, लेकिन वो सब्र कर लेते हैं। तो आज लोग कमर्शियल इखलाक का इजहार करते हैं तो मुझे और आपको क्यों नहीं आता? कभी आप सुने, यानी कुछ लोग हैं जो ऐसा जॉब करते हैं जो लोगों से राय लेते हैं, टेलीकम्युनिकेशन का आज रिवाज है, तो वो फ़ोन करके गालें करते हैं अपने घरों में, आप हमारी सर्विस से मुतासर हैं, दे है वो है, आगे से गालियाँ पड़ती हैं। आपको पता उनको, कभी आपको भी घर में फ़ोन आते होंगे कि हमारे से बच्चे पढ़वा लें? यहाँ तो पता नहीं कम आते हैं, नॉर्वे में बड़े फ़ोन आते हैं, यहाँ भी आते हैं। हमारे स्कूल में नॉर्वे के फ़ोन में इतने फ़ोन आते हैं और समझ नहीं आता कि उनको नंबर मिलते कहाँ से हैं। वो पीछे से डिक्शनरियों में पाकिस्तान में बैठे ले, जी हमने अकेडमी खोल ली, आप बच्चे पढ़वाएं। तो अब तो वो जो साथी हैं उनको कहते हैं हम खुद पढ़ाते हैं, तुमने पढ़वाना है तो हमसे पढ़वा लो, लेकिन वो डांट डूंट खा के फिर चुप हो जाते हैं। इस तरह हमने भी थकना नहीं है, इस तरह से इंशाल्लाह ताला अपने आप को लेके आएंगे। ये लफ्ज़ है ना हफ़ी, इसका रूट लिख लें, हा फा वाओ। हफ़ी जो बहुत ज़्यादा मतलाशी हो, सीकर, तलाश के साथ किसी का हाल मालूम करना, यानी कोई किसी के बारे में मतलाशी तब ही होता है जब उससे कंसर्न्ड होता है, किसी के हालात को जानने की कोशिश करना। सूरत शोरा आयत 86 में भी हज़रत इब्राहिम का अपने बाप के लिए तड़पना आता है। अच्छा एक बात समझ लें, इब्राहिम कितना तड़पे, बाप को फ़ायदा हुआ, सस्तग़फिरुलक रब्बी। इब्राहिम की दुआ तो कबूल नहीं हुई मगर वो दुआ आज हम सब की दुआ बन गई कि रब्बिग़फिरली वली वालिदैया وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ، سورہ شورا آیت 86 میں آتا ہے۔ تو ہمیں سکھا دیا کہ تڑپو۔ اچھا جب ابراہیم کو پتہ چل گیا کہ باپ مشرک ہے، پھر اس کے بعد دعا نہیں کی، تو کیا پتہ چلا کہ زندہ مشرکوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں ہدایت کی، دنیا سے چلے جائیں اس کے بعد دعا نہیں کی جا سکتی۔ باپ کی ڈانٹ سن کے، باتیں سن کر، دیکھنے میں لگتا تھا آج کا سبق کیسے گزر جائے گا، اسٹوریز ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبیوں کی کہانیوں میں کتنے عمل کے نقطے۔ کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ آج کے دور کی شخصیت ہے؟ حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آج سے تقریباً 4,500 سال پہلے کی شخصیت ہے۔ 2160 قبل مسیح میں پیدا ہوئے تھے اور 1985 بیفور کرائسٹ یعنی بی سی میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ لوگ ان سے اتنی محبت کرتے ہیں، اور آج کے دور کے جتنے بھی مذہب ہیں، مسلمان، کرسچینس، جیوز اور اس دور کے مشرکین مکہ جس کو آپ آج ہندو کہہ لیں، یہ سب کسی نہ کسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنا تعلق جوڑتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جب ایک انسان اپنے وقت کے رواج کے خلاف جہاد کرتا ہے نا، تو جو اس دور کے لوگ ہوتے ہیں وہ تو اس کو پسند نہیں کرتے، سیدھی سی بات ہے، لیکن بعد میں اللہ ان کا نام رکھتا ہے۔ یہ آپ کو سارے ہی مسلم ہیروز کے اندر دکھے گا کہ اپنے وقت کے لوگوں نے بعض اوقات ان سے وہ فائدہ نہیں اٹھایا، لیکن بعد میں آج کے لوگ وہاں اس چیز کو دیکھتے ہیں۔